اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروردگار عالم نے ہمیں زندگی دی تاکہ اس کو ہم بہتر طریقے سے جی سکیں اور اپنے تمام فریضے کو انجام دے سکیں. وہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ایک انسان کس طریقے سے اپنے تمام امور کو انجام دیتا ہے اس پر وہ غور کرے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ایک انسان کی مختلف اور متعدد ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کبھی وہی انسان ایک بیٹے کے عنوان سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے, کبھی ایک باپ بن کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے, اور کبھی اب ایک شوہر بن کر بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. لیکن یہ ذمہ داری کس طریقے سے نبھائی جائے تاکہ معاشرہ ہمارا اصلاح کی طرف جائے, نہ کہ اس میں فساد برپا ہو. انہی تمام موضوعات پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور مسلسل ہم علی جناب مولانا علی عدیم شیراری صاحب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لہذا ایک وہ مقام ازدواجی زندگی میں کہ ایک انسان شادی کر لیتا ہے اپنے تمام جوش و خروش کے ساتھ, لیکن جب وہ شادی کے بعد اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے کامیاب بنائے, تو شاید اسے خود پتہ نہیں رہتا ہے کہ مجھے کن پیچ و تاب سے گزرنا ہے اور کس نشیب و فراز سے ہماری کشتی کو آگے لے کے جانا ہے. اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ ان مشکلات میں گھر جاتا ہے کہ آخر چارہ کار کیا ہے, راہ حل کیا ہے. انہی تمام راہ حل کی طرف اور چارہ کار کی طرف جستجو کے لیے چلتے ہیں اپنے عزیز مولانا عظیم شیرازی صاحب کی طرف, اور ان سے طلب کرتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے ایک نوجوان اپنی زندگی کو کامیاب بنائے. لہٰذا آئیے ہم سب استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا عظیم شیرازی صاحب کا. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہماری آواز پر آپ نے لبیک کہا, اور ہمارے سامعین اور ناظرین مسلسل آپ سے استفادہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے زمانے میں بھی وہ آپ سے کسب فیض کرتے رہیں گے. لہذا جو ہماری گفتگو مولانا چل رہی ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب کس طریقے سے بنائیں. لہذا آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ پچھلی گفتگو کا ایک خاکہ اور خلاصہ ہمارے اذہان کے لیے پھر سے ارشاد فرمائیں.
جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو اب تک پروگرامز میں جو مختصر سی گفتگو کی ہے اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان کپلز کو, یہ جن کے ابھی کچھ عرصے ہوئے شادی ہوئے
جی,
ان کو کچھ گائیڈ لائنز دے سکیں اور خود بھی ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں جو باتیں ہم یہاں بتا رہے ہیں
جی.
اس حوالے سے ہم نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ دیکھی کہ انسان کی بنیادی جو فکر اگر اس کی صحیح ہوگی اور اس حقیقت کے مطابق ہوگی جو ہے
جی,
تو اس کی زندگی میں پریشانی اور مشکلات کم ہوں گی
جی.
یعنی جو تحقیقات سوشیولوجسٹ نے کی ہیں, سائیکالوجسٹ نے کی ہیں, دانش مند افراد نے کی ہے
جی,
جو بات آپ کو دین نے بتائی ہے, انبیاؤں نے فرمایا ہے, آئمہ کے اقوال ہیں, اگر ان کو ہم جمع کرتے ہیں, ان کو سٹڈی کرتے ہیں, تو انسان کی حقیقت جو ہے نا وہ اس کی فکر کی بنیاد پر ہے
جی.
اس کی ریالٹی, اس کی افکار جو ہے نا وہ اس کی فکر کی بنیاد پہ
جی.
فکر بنائی جاتی ہے پہلے انسان کی, بچپن میں اس کی عادتیں بنائی جاتی ہیں, جب وہ میچیور ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, سمجھنے لگتا ہے, تو پھر اس کی فکر بنائی جاتی ہے
جی.
تاکہ وہ صحیح و سالم فکر کرے
جی.
اور یہ صحیح و سالم فکر سے مراد بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو تکلیف ہوگی اور یہ کروں گا تو خوشی ہوگی
جی,
تو آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں, پھر اسی طرح سے آپ کے
فکر کرنا
شروع کر دیتے ہیں
جی.
ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم صحیح فکر کریں, یعنی حقیقت کے مطابق. اگر ہم حقیقت کے مطابق فکر کریں گے تو ہمیں مشکلات نہیں ہوں گی, ہمیں
جی.
پریشانیاں نہیں ہوں گی, اور اگر پریشانیاں آئیں بھی تو وہ ہمارے لیے نارمل ہوں گی
جی,
کیونکہ واقعیت ایسی ہی ہے, حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک,
ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر لیں,
ہم تیار کر لیں گے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہم ایک مسلمان ہیں, خدا وند عالم نے ہمارا امتحان لینا ہے
جی,
چاہے ہم شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں
جی.
ٹھیک ہے, چاہے ہم بچے والے ہوں یا غیر بچے والے ہوں, ہمارا امتحان تو خدا لے گا ہر مرحلے میں
جی.
تو پھر ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے, اور یہاں پہ ہم صرف اور صرف انجوائے کرنے نہیں آئے, آرام کی زندگی گزارنے نہیں آئے
جی.
یہ تصور تو رینیسنس کے بعد آئے, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जब आया और साइंस ने तरक्की की, उससे पहले एक एक तबकाबंदी जो की गई है वो यही है कि एक दफ़ा एग्रीकल्चर का दौर था जब लोग खेती बाड़ी किया करते थे। उस दौर में लोग मेहनत मुशक्क़त और इसी को ज़िंदगी समझते थे। उसके बाद साइंस का दौर आया, तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी आई, फिर आराम का तसव्वुर आ गया, आसाइश का तसव्वुर आ गया, लग्जरियस लाइफ का तसव्वुर आ गया, सुकून आराम ये तसव्वुर आ गया। अब उससे आगे फिर हम बढ़ रहे हैं, तो ये चेंज आया कल्चर में, फिक्र में, और वही अभी हमारे अभी भी मौजूद है कि हम ये चाहते हैं ज़िंदगी आराम, सुकून, और उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो।
जी
फिक्र डाली जाती है ना, उसी के लिए फिर आपको आसाइशें दिखाई जाती हैं, वही टीवी में आप एड्स देखते हैं कि ये आ जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, वो आ जाएगा तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। जबकि तकलीफ़, सख्ती ये हिस्सा है ज़िंदगी का,
जी
और सख्ती करके और मेहनत के ज़रिए इंसान कमाल तक पहुँचता है। तो इस तसव्वुर को हमें देखना है, दीन के अंदर भी ऐसा ही है। दीन हमारा जो तसव्वुर है आराम का, सुकून का, वो ईमान के साथ है,
जी
क्योंकि ईमान आपको आराम और सुकून देता है। उसके बाद जब आप मेहनत करते हैं और कामयाब होते हैं तब आपको सुकून और आराम मिलता है। इस और भी तरीके हैं आराम और सुकून के, खुदा के जिक्र में मिसाल के तौर पे सुकून है, खुदा खुदावंद करीम ने रखा है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी इंशाल्लाह फुर्सत होगी तो बात करेंगे, लेकिन सिर्फ कहने का मकसद यहाँ ये कि हम खुलासतन ये बताना चाह रहे हैं कि इस ज़िंदगी जो मियाँ बीवी की इज़दिवाजी ज़िंदगी है, इसमें सख्तियाँ भी हैं और इसमें
जी
खुशियाँ भी हैं। इसमें आपको मेहनत मुशक्क़त भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और मिलजुल कर करेंगे तो आप कामयाब होंगे। आपकी फिक्री जो रुश्तनुमा है वो सही होनी चाहिए।
यानी बात हमारी वहीं पलट रही है कि हमारे अहदाफ मुश्तरक हों, मिलजुल कर कोई काम करें।
हम अहदाफ मुश्तरक को सही हों,
जी
ये भी इम्पोर्टेंट बात है ना।
जी
हम
जी
एक चीज़ ऐसी चीज़ को अपना हदफ बना लें जो हकीकत पर मबनी ना हो,
जी जी
तो हमें तकलीफ ही रहेगी हमेशा। तो इसलिए दीन ये चाहता है कि आपकी फिक्री तौर पर आप सही सोचें, हकीकत के मुताबिक सोचें, और फिर ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। इसी हकीकत की बुनियाद पर हम देखना चाहते हैं कि इस्लाम ने शादी को क्यों इतनी अहमियत दी है। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि खुदा के नज़दीक जो है ये एक बेहतरीन बुनियाद है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है
जी
शादी। आखिर ये क्यों है, इस्लाम ने क्यों इतनी अहमियत दी है, जबकि इसके मुकाबले में दूसरी जगहों पर हम इतनी अहमियत नहीं देखते शादी को। की नहीं की कोई मसला नहीं है, कर दी छोड़ दिया वो कोई मसला नहीं है, यानी इसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। बच्चे हो गए उनको भी कोई अहमियत नहीं दे रहे। तो ये एक ज़िंदगी है जिसमें कोई शादी की बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, डिवोर्स कोई मसला नहीं है, बच्चों की परवरिश कोई बड़ी अहमियत नहीं है, एक जगह इतनी ज़्यादा अहमियत है। मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पेश
जी
करूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्बियाओं का अख्लाक ये है कि उनको अपनी जौजा से मोहब्बत होती है,
जी
ख़वातीन से मोहब्बत है उनको, यानी औरत ज़ात से मोहब्बत करना ये अख्लाक अम्बिया है। हमारे यहाँ माशरे में मर्द हजरात औरत को किस निगाह से देखते हैं, किस इज्जत के साथ उसको देखते हैं, कितनी अहमियत देते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में, क्या मकाम व मंजिलत है खातून का। जबकि हम ये कह रहे हैं कि अम्बिया का अखलाक, अम्बिया की निगाह खवातीन के ऊपर मोहब्बत आमेज है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितना दीन अहमियत दे रहे हैं खातून को।
जी
एक ही एक और हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अल अब्द कुल्लमा इज़दादा लिन्निसाए हुब्बन इज़दादा फिल ईमान, यानी एक शख्स का जितना ईमान ज़्यादा होगा उतना ही मोहब्बत उसके दिल में खातून के लिए ज़्यादा होगा, अपनी बीवी के लिए। इसके बरक्स भी है, दोनों हदीसें, कि जब आपकी मोहब्बत अपनी जौजा से ज़्यादा होगी आपके
तो ईमान
ईमान
में
में भी
इजाफा
इजाफा
होगा।
होगा।
जी
दोनों चीज़ें, ईमान में इजाफा होगा तो अपनी बेगम से, आपकी अपनी खातून से मोहब्बत में इजाफा होगा, यानी दोनों का ताल्लुक है। यानी हमारे क्या हमारे माशरे में ये फिक्र मौजूद है कि अगर मैं एक शख्स मोमिन बनना चाह रहा हूँ तो मेरे दिल में मेरी बीवी की मोहब्बत भी बढ़ती चली जाए, उसकी इज्जत, उसका एहतराम बढ़ता चला जाए, या नहीं हम अपने आप को बहुत मुतदय्यन समझते हैं लेकिन बीवी की कोई इज्जत, कोई कदर मंजिलत, कोई मकाम नहीं होता। इसी तरह क्या बीवी ऐसा सोचती है। तो ये हमारी फिक्र जो इस्लामी होनी चाहिए, हमें उस निगाह से शादी को देखना चाहिए, वो है नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में, जो हमारे प्रॉब्लम्स आती
जी
हैं। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि हम इस बात पर अहमियत दें, तवज्जो दें कि हमारी जो ये ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी, ये बहुत अहम है,
जी
ये बहुत बुनियादी काम है कि इसके अंदर ज़बरदस्त हम फिक्री पाई जाए, हम मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें। क्यों क्यों खुदावंद करीम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अम्बिया को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे माशरा बनने वाला है, छोटे छोटी फैमिलीज
जी
से
हाँ
माशरा बनता है, सोसाइटी बनती है, माशरा बनता है। अगर कामयाब इज़दिवाजी ज़िंदगी होगी
तो एक अच्छा माशरा
एक
होगा।
अच्छे माशरे की बुनियाद डलेगी।
जी
लेकिन जब इज़दिवाजी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं होगी, यानी ये मियाँ बीवी ही कामयाबी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे होंगे, तो जब इस घर में वो बच्चे आएंगे उनको कैसा माहौल मिलेगा? आप तसव्वुर कर लें, शहर के अंदर एक शहर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ठीक है ना, अमनियत ना हो, सुकून ना हो, कभी धमाके हो रहे हों, कभी किलिंग्स हो रही हों, कभी लोग लड़ रहे हों, एक अजीब बेनज़मी हो ज़िंदगी के अंदर, तो उस माहौल में बच्चे कैसे पलते बढ़ते हैं?
हर इंसान अपने को गैर महफूज महसूस करेगा।
ठीक है ना, कोई उम्मीद नहीं रहती ज़िंदगी में, कोई हदफ नहीं रहता, सिर्फ टेंशन परेशानियाँ, इसमें तरक्की नहीं होती मुल्क के अंदर,
जी
इसके अंदर इंसान कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकता, वो अपने आप को भी खो देता है, अपने ज़िंदगी के उमूर को ख़राब कर देता है और वो मायूस रहने लगता है। तो फिर ऐसा घर अगर होगा तो माशरा कैसा होगा?
जी
फिर आप बिल्कुल ग्लोबल हवाले से देखें,
जी
आज आप देखें पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है, जिसकी एक बड़ी वजह, सारी वजूहत ये नहीं है लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आप फैमिलीज़ को जाकर देखें कि फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। यानी आज ख़ास तौर से जो वेस्ट में मसाइल हैं उसमें तो शादी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। शादी भी वहाँ जब होती है जब उनके बच्चे हो जाते हैं, बाज़ जगहों पे तो ऐसा होता है कि साथ रह रहे हैं, अब बच्चे हो गए, बच्चे भी 2-3 हो गए या एक हो गया, कुछ 4-5 साल का हो गया, वो कहते हैं कि अच्छा नाउ लेट्स गेट मैरिड, अब हम लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, वो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो शादी करते हैं,
जी
वरना वहाँ शादी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया। ये कल्चर हमारे ईस्ट में भी आ गया कि अब शादी का को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बाकी तमाम गुनाह के अमल में वो अंजाम दे रहे हैं और उसको कोई बुरा भी नहीं समझ रहे, बल्कि इफ्तिखार भी करते हैं, बाज़ लोग तो गुनाह करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि हमने ये गुनाह किया, हमने
यानी
ये गुनाह
इफ्फत
किया,
का अनुमान खत्म होता जा
इफ्फत
रहा
का
है।
अनुमान ख़त्म होता जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहे हैं, हमारी फिक्र चेंज होती जा रही है और अब हमें बुरी चीज़ बुरी नहीं लग रही, बल्कि शायद बाज़ लोगों के लिए तो बायस इफ्तिखार भी हो गया। तो इसलिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कामयाबी के लिए, और कामयाब इज्दवाजी ज़िंदगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी गर्दन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ इनफरादी नहीं है बल्कि इज्तमाही भी।
इज्तिमाई
जी
ये जो अभी आपने कहा कि मसलन मोहब्बत माशरे का हमारा हम हर इंसान मसलन मोहब्बत नहीं कर पाते, जबकि इस्लाम ने मोहब्बत के ऊपर जोर दिया है, ताकि अम्बिया ने हमारे ये काम किया कि वो मसलन औरतों को अपने महबूब रखते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। और बज़ाहिर तो हर इंसान मसलन हमारे माशरे का हर इंसान ये चाहता है कि वो अपनी इज्दवाजी ज़िंदगी को मोहब्बत आमेज़ गुजारे। हर इंसान ये चाहता है कि हमारी शादी जो हो रही है हम उससे मोहब्बत करें अपनी बीवी से, ज़ौजा भी ये चाहती है कि अपने शोहर से मोहब्बत करें। लेकिन जैसे शादी होती है उसके बाद इख्तलाफात हमारे दरमियान ईजाद होने लगते हैं और इख्तलाफात हम वजूद में आने लगते हैं। क्या हर इंसान तो नहीं कह सकते, हर इंसान तो बहरहाल अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये आखिर ये मोहब्बत क्यों ख़त्म हो जाती है? आखिर इसके अवामिल क्या हैं? हम उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर पाते? इस पर आप रोशनी डालिए।
देखें, मोहब्बत क्यों ख़त्म हो जाती है या मोहब्बत क्यों कम हो जाती है, उसके मुख्तलिफ अवामिल हैं, जिस तरह मोहब्बत के इजाफा करने के मुख्तलिफ अवामिल हैं, मोहब्बत के ख़त्म होने के भी मुख्तलिफ अवामिल हैं, इसी तरह ज़िंदगी में जो सुकून है उसके ख़त्म होने के भी मुख्तलिफ अवामिल हैं। हम सब फितरतन मोहब्बत रखते हैं अपने अंदर, ठीक है ना, खुदावंद आलम ने हमारे वजूद में, हमारी फितरत में मोहब्बत को डाल दिया है, ये क़ुव्वत है, एक एहसास है जो इंसान के अंदर मौजूद है, ये फलता फूलता बड़ा भी हो जाता है और ये कमज़ोर ज़यीफ़ भी हो जाता है। लेकिन क्यों इंसान की ज़िंदगी से मोहब्बत कम होना शुरू हो जाती है, उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, हम एक दूसरे को ये समझा रहे होते हैं कि आप मुझे समझ लें, शौहर भी बीवी से यही कह रहा होता है कि आप मेरी बात को समझें, मुझे समझें और मेरे मुताबिक सोचें, क्योंकि मुझे अपने ज़िंदगी के अहदाफ को हासिल करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों को हासिल करना है और आप मेरी मुआविन और मददगार साबित हों। वो भी पलट के कह रही होती है कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, मेरी भी कुछ आरजुएं हैं, आप उसको समझें, आप अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आपका साथ कैसे दूंगी, इसको हम दूसरे अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देखिए, मर्द की कामयाबी, मर्द की को बाकमाल होना उसके प्रोफेशन में होता है, जो वो जॉब करता है, जो वो काम करता है, जिस जगह से वो रिस्क लेके आ रहा होता है उसमें वो अपने आप को कामयाब देखना चाहता है। अगर एक स्कॉलर है, एक आलिम दीन है, एक स्कॉलर है, तो वो अपने रिसर्च वर्क में चाहता है कि वो कामयाब हो, तब मुताला करे, तहकीक करे, तालीफ करे, टीवी में प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो उसके लिए वो अपने आप को तैयार करे। बहरहाल वो इल्मी दुनिया में कामयाबी चाहता है, अचीवमेंट उसके लिए होती हैं। एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो फले फूले और प्रोग्रेस करे,
तजारती पहलू में कामयाब होना
कामयाब
चाहता
अपने बिजनेस के अंदर। इसी तरह कोई और प्रोफेशन के अंदर है, वो इंजीनियर है, वो अपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जाना चाहते हैं।
जी।
सब अपने प्रोफेशन में कमाल के तक पहुंचना चाहते हैं। ये मर्द की खुशी, उसकी कामयाबी, उसकी फिक्र इसी चीज़ पर मुतमरकज होती है।
जी
और वो अपने लाइफ पार्टनर को चाहता है कि वो उसको इस रास्ते में उसकी मुआविन और मददगार साबित हो।
कामयाबी के रास्ते में
ये पहले मरहले में
जी
जो उसके नज़दीक कामयाबी
जी
है।
जी
इसी के मुकाबले में वो खातून जो उसकी जौजा है, उनकी कामयाबी ये होती है कि वो घर के अंदर अपने मियाँ और बच्चों को खुश व खुर्रम देखें,
जी
वो अपने मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ शॉपिंग पे जाएं,
जी
घूमें, उनको
जी
अपने मियाँ का साथ मज़ा आता है, घर वालों को लेकर खाने पे कहीं जाएं, मिसाल के तौर पे आउटिंग पे जाएं, रेस्टोरेंट पे जाएं, पार्क में जाएं, जहाँ मियाँ बीवी बच्चे बैठे हैं, वो खेल रहे हो, हंसी मजाक वहाँ हो रहा हो,
जी
खुशगवार माहौल हो, मियाँ उनको टाइम दे, वो अब मियाँ और बच्चों को टाइम दे, बच्चे सब मिलके एक दूसरे को टाइम दे, ये उनकी खुशी है, ये उनकी कामयाबी है। लेकिन अगर उनको ये ना मिले और मियाँ ऑफिस से भी घर आए और घर आकर भी ऑफिस का ही काम करता रहे, या अगर कोई दानिशमंद है तो वो अपने बुक रीडिंग में लगा रहे, लाइब्रेरी में जाके अपने घर में बैठ जाए और बच्चों को ना टाइम दे ना अपनी जौजा को टाइम दे, तो इसकी इसको लगेगा मैं नाकाम हो रही हूँ।
जी
जिस चीज़ के लिए मेरी कामयाबी है उसमें मेरा मियाँ मेरा साथ नहीं दे रहे,
इसके तस्वुर के खिलाफ चीज़ें
इसके
हो रही
तसव्वुर के
हैं।
खिलाफ हो रही है। अब नतीजा क्या निकलेगा? क्लैश होगा, झगड़े होंगे, चिक चिक होगी, नाराहतगी होगी, आपस में इख्तलाफ होगा,
जी
क्योंकि हम दोनों अलग अलग वैल्यूज़ को अहमियत देते हैं।
जी
तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारी कामयाबी इसमें कि हम कामयाब हो जाएं,
जी
वो भी इसी खातून भी इसी सिलसिले में कामयाब होना चाहती है, क्योंकि हर इंसान बाकमाल है, बाकमाल की तरफ जाना चाहता है, कमाल को हासिल करना चाहता है। तो वो यहाँ ये देख रही होती है कि मैं तो नाकाम हो रही हूँ, ये अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और मैं अपने मकसद में नाकाम हो रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी टाइम नहीं देते जितना देना चाहिए, ना
बच्चों
वो
को टाइम
इम्पोर्टेंस देते हैं मुझे जो इनको देना चाहिए, ना बच्चों, सब हम लोग तो फेल हो गए। अब मायूसी शुरू हो जाती है, नतीजा क्या निकलता है कि शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहले मरहले में ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर ये बात अर्ज करूँगा, आगे जाके हम और भी बातें करेंगे,
जी
लेकिन इस मरहले में सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जहन में आप ज़रूर रखें कि मेरे लाइफ पार्टनर के जहन में कामयाबी का तसव्वुर क्या है, उसकी खुशी और कामयाबी किस चीज़ में,
जी
ये आपके लिए जानना ज़रूरी है।
जी
और आप अपने लाइफ पार्टनर को कितना अच्छा जानते हैं,
जी
उसके बारे में कितना जानते हैं।
जी
हो सकता है किसी किसी कल्चर में ये इंपॉर्टेंट बात ही ना हो, वो कहें ये क्या बातें हैं, फजूल सी बातें हैं, बस ज़िंदगी सभी गुजारते हैं और गुजर जाती है और इस तरह हो जाती है। हम एक कामयाब ज़िंदगी की बात करना चाह रहे हैं जिसमें मियाँ बीवी दोनों को ये एहसास हो कि कामयाबी क्या है क्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ सवाल चाह रहा था नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँ, अगर आप इजाज़त दें तो,
जी बिस्मिल्लाह
ये अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अगर इसका जवाब आप ना भी दे सकें इन सवालों का, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं लेंगे कि आपके हम बिल्कुल ही नहीं समझते, हम तो उस पर काम करना चाह रहे हैं ना। मिसाल तौर पर पहला सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीक हयात का, आपके लाइफ पार्टनर का फ़लसफ़ा हयात क्या है,
जी
उनके नज़दीक जीने का मकसद क्या है, उनके नज़दीक कामयाब इज़दिवाज़ ज़िंदगी का तसव्वुर क्या है।
जी
पहला सवाल तो ये हो गया,
जी
यानी अगर हर शौहर अपनी बीवी से ये पूछे या बीवी शौहर से पूछे, इस वो पूछे नहीं बल्कि उसको ये पता होना चाहिए, अगर वो समझता है या वो समझती है कि वह कामयाब से इज़दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही है, तो कम से कम वो ये ज़रूर जानती होगी कि मेरे शौहर का फ़लसफ़ा हयात क्या है। ठीक है, इसी तरह शौहर भी जानता होगा,
जी
ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि मेरे लाइफ पार्टनर के ख्वाब क्या हैं, ज़िंदगी के ख्वाब।
ये जो अपनी ज़रूरत क्या महसूस करता है वो
जी हाँ,
आगे की ज़िंदगी के बारे
जो
में।
हम शादी से पहले भी कुछ ख्वाब होते हैं ना
जी
शादी के, इज़दवाजी ज़िंदगी के, इसी तरह शादी के बाद जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके ज़िंदगी के ख्वाब क्या हैं, किन चीज़ों को वो हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको बेअनवान शौहर, मुझे भी ये पता होना चाहिए कि मेरी ज़ौजा के क्या ख्वाब हैं ज़िंदगी के।
जी
ये आपको, अच्छा तीसरा सवाल कि मियाँ बीवी बता सकते हैं कि इस वक्त शौहर ये बता सकता है कि मेरी बीवी किन परेशानियों में है, उसकी परेशानियाँ क्या हैं, उसकी बेचैनी किस चीज़ पर है, घबरा जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस,
जी
किस स्ट्रेस में वो है, उसके ऊपर किस किस्म का फिशार है, प्रेशर है, क्या हम जानते हैं या नहीं जानते, बीवी शौहर के बारे में जानती है या नहीं जानती, शौहर बीवी के बारे में जानते हैं या नहीं जानता। और आखिरी सवाल ये कि कौन सा वो तीन मौके आप ले लें कि वो कौन से
जी
तीन मौके मेरी लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसे बेहतरीन आए जो मुझे पता है।
जी
यानी अगर मैं अपनी अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आपको पता है कि आपके ज़ौजा की ज़िंदगी में तीन बेहतरीन लम्हात कौन से हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये तीन वाक़यात हैं।
जी
इसी तरह उनको भी मेरे बारे में पता होना चाहिए। यानी ये पहला मरहला है कि आपको इतनी बुनियादी बातें एक दूसरे की
मालूम होनी
मालूम
चाहिए।
होनी चाहिए। अगर आप वाकई एक अच्छे शौहर हैं मियाँ बीवी हैं, तो आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए ना। जिसको आप पसंद करते हैं उसके बारे में तो हज़ारों मालूमात हासिल करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, जो आप कोई भी चीज़, तो आप उसके बारे में मालूमात करते हैं या नहीं
जी
करते। अब जो आपका लाइफ पार्टनर है, सारी ज़िंदगी रहने वाला आपका साथी है, उसके बारे में आपको मालूमात कितनी है? सिर्फ ज़ाहरी मालूमात तो नहीं चाहिए ना, हमें तो फिक्री एहसासाती जो पाँच बातें हमने बताई थी
जी
शुरू में, हमें उस बारे में मालूमात तो होनी चाहिए। तो कम से कम हमें ये बातें तो पता हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम कुछ और सवाल देंगे कि वो भी आप एक दूसरे से पूछें, लेकिन इसमें मायूसी ना हो आपको। खुदा ना खास्ता अगर जवाब ना मिल सके तो इसमें मायूस ना हो, आप काम करना शुरू कर दें।
जी एक लम्हे फिक्रिया आप देना चाहते हैं कि आखिर हर इंसान सोचे।
सोचे
जी
सोचेंगे तो फिर हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे ना। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा जवाब आएगा।
जी
अब हम सोचेंगे ही नहीं तो जवाब कहाँ से आएगा? और फिर एक दूसरे के साथ बैठकर फिर हम जानने की कोशिश करेंगे
जी ये सारी चीज़ें वो हैं जिनसे हमारी मोहब्बत में इजाफा होगा।
बिल्कुल हमारी मोहब्बत में इजाफा होगा जब हमें पता चलेगा कि हमें कितना मालूम है एक दूसरे के बारे में।
जी
ठीक है ना, ये मोहब्बत, ये अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो रहा है। इसका नतीजा कोई मोहब्बत है।
जी
ज़्यादा तो जब अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी तो मोहब्बत होगी ना, जब फिक्र मिलने लगेगी तो मोहब्बत भी
एक
पैदा हो
दूसरे की
जाएगी।
चीज़ें
जी हाँ
समझेंगे,
बिल्कुल। तो ये
तसव्वुरात।
हमने चार बुनियादी सवाल नाज़रीन की खिदमत में पेश किए, इसके वो जवाबात अगर हैं उनके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। यानी वो कामयाबी के रास्ते पर कदम उठा चुके हैं
जी
कि वो इन सवाल के ज़रिए, इनके जवाबात के ज़रिए वो अपने अंदर एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ताकि वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में।
जी
जी
ये जो इंसान की इज़दवाजी ज़िंदगी है,
जी
बहरहाल हर इंसान इस दुनिया में,
जी
ख़ासतौर से इस दुनिया में, जैसा कि अभी आपने इशारा किया कि इंसान ज़माने के हिसाब से जीता रहा।
जी
वो एक ज़रात का ज़माना था, उसमें
जी
इंसान ज़हमतकश था, मेहनत करता था। आज का ज़माना ये एक इंसान मेहनत भी करता है और आराम भी, जिस्मी आराम के पीछे भाग रहा है।
जी
लेकिन वो कोई भी ज़माना, और लेकिन इंसान मानवी सुकून की तलाश में हमेशा से था।
जी
और इज़दवाजी मसला वो है कि बहरहाल अल्लाह ने इतनी अहमियत दी है तो बहरहाल इसमें सुकून होगा। और कुरान की आयत भी जिसको आपने उन्वान
जी
सुकून करार दिया है
जी
अपने,
जी
उसमें ये कि ले तस्कुनू इलैहा, ताकि
जी
हम सुकून पा सकें। लेकिन
बाय
अक्सर जिंदगियां जो महवर इज़दवाज पर आके ठहरती हैं,
जी
उनमें शायद इंसान सुकून ही की तलाश में आखिर उम्र तक लगा रहता, वो सुकून मिल नहीं पाता।
सही
वो
है
क्यों?
जी, बहुत ही असासी सवाल आपने किए और बहुत अच्छा सवाल है। सुकून मुख्तलिफ चीज़ों में खुदावंदे आलम ने सुकून को रखा है, क्योंकि इंसान सिर्फ एक डायमेंशन पे नहीं है, एक बोधी नहीं है, एक उसका मादी पहलू है, एक उसका मानवी पहलू है। अल्लाह बज़िक्रल्लाह तत्मैनुल क़ुलूब,
जी
ठीक है ना, कल्ब को इत्मीनान ही जब होगा जब जिक्र खुदा होगा, ये सुकून अलग है। और नहार उल लैल की बात जहाँ खुदावंदे आलम ने की है, वो रात आराम के लिए बनाया है, तो वो रात जो आराम के लिए बनाया है वो एक और सुकून है।
जी
तो सुकून मुख्तलिफ तरह से, रिस्क के हलाल खाने में एक सुकून है,
जी
ईमान के इजाफा होने में एक सुकून है।
जी जी
तो ऐसा ना हो कि हम इस सुकून, जो शादीशुदा जिंदगी के ज़रिए सुकून को सुकून हासिल होता है, इससे उसको मिक्स कर दें।
जी
यानी हो सकता है एक
हर एक की
इंसान,
कैफियत अपनी
हर एक की
अलग है।
कैफियत अपनी अलग अलग, और उसके बारे में लोग मुताला करें तो ज़्यादा अच्छे, कि हो सकता है एक इंसान उसकी बीवी अच्छी हो लेकिन उस क्योंकि वो खुदा उसकी ज़िंदगी में ही नहीं है, खुदा को याद नहीं करता, खुदा की इबादत नहीं करता, तो वो बेचैनी रहेगा।
जी
एक इंसान इतनी मेहनत करता है, रात को वो आराम नहीं करता, रातों को जागता है, मिसाल के तौर पे दिन में काम करता है रातों को जागता है, तो वो इसको एक आराम और सुकून छिन जाएगा उसके पास से। यह सब कुछ करता है लेकिन हराम खा रहा है, तो ज़िंदगी में सुकून कहाँ से मिलेगा?
जी
एक आदमी शराब खोर है, उसको अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून कहाँ मिलेगा? वो कहेगा
जी
मैंने तो शादी की थी सुकून के लिए, सुकून नहीं है तो जाहिर सी बात है आप हराम काम कर रहे हैं, आपको सुकून कहाँ से मिलेगा?
जी
ये बातें अपनी जगह है। اب یہ سکون جو میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں پیدا ہوتا ہے اور یہ سکون جو ان کی زندگی سے چلا جاتا ہے, اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا تعلق آپس میں محبت سے بھی ہے, لنکڈ ہے یہ چیزیں. وہ چیز ہے اعتماد, ٹرسٹ.
مولانا اگر معذرت ہو تو یہیں پر اگر گفتگو ہم اپنی روک سکیں چونکہ وقت تقریباً بالکل ختم ہو چکا ہے.
اچھا,
تو اعتماد پر اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے اور اپنے ناظرین کو اعتماد دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری اسی موضوع سے گفتگو شروع ہوگی. تو ناظرین محترم, آج کی ہماری گفتگو یہیں پر رکتی ہے, لیکن اگلے پروگرام میں یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اب اپنے آپ میزبان شبیل عباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.